सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की,
जय परम पूज मुंडा श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज मुंडा श्री भव्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की।
हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन में किस तरह से कल्याण का मार्ग अपना सकें इस बारे में विचार कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा कल्याण किस में है, लेकिन अकेले जानने से ही यदि जीवन में परिवर्तन हो जाता तो अभी तक सबके जीवन में परिवर्तन हो चुका होता। लेकिन जानने के साथ साथ जब वो हमारा जानना हमारे आचरण में परिवर्तित होने लगता है तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आना संभव होता है। हमने पिछले दिनों ये कोशिश की है कि हम जितना जाने उसका 1% भले ही पर अपने जीवन में उसको अनुभव में ला करके भी देखें। सन 80 में आचार्य महाराज जब हम लोगों को मूलाचार्य जी और मूलाचार्य प्रदीप पढ़ाते थे तो 12 तपों की जब चर्चा आती थी तो कहते थे कि अपने जीवन में एक एक तप को एक एक दिन करके तो देखना, उपवास करके देखना कैसा लगता है, एक ग्रास अकेला लेकर के वापस लौट के आना देखें कैसा लगता है, एक ग्रास और लेने का मन था वो भी त्याग कर दिया, ये भी उनोदर है, ऐसा करके देखना, रस परित्याग करके वृत्ति परिसंख्यान लेकर के देखना। वृत्ति परिसंख्यान तब बहुत कठिन तप होता है, ऐसा नहीं समझना कि आसान होता है, आहार न मिले इस भावना से लिया जाता है, ऐसी कठिन अभिग्रह किया जाता है कि जो संभव ही नहीं है कि सामान्य रूप से मिलना संभव हो जाए। ऐसे वृत्ति परिसंख्यान गुरु की आज्ञा से ही किया जाता है, ऐसे रोज सोच लेना वो बिल्कुल अलग चीज है और वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप करना वो गुरु की आज्ञा से। तो जो एक एक ये सब चीजें हैं वो अपने जीवन में इनका स्वाद आए, इन सब चीजों को हम करके देखें, जो हम जानते हैं ऐसा हमारे मन में एक ललक होनी चाहिए। पिछले दिनों मुझे तो इतना विश्वास है कि अपन ने जितना जाना है उसका 1% भले ही 100% तो कोई नहीं कर सकता, जितना अपन जानते हैं उसका पूरा का पूरा, पर करने का मन हो करने की भावना हो यही अपने लिए पर्याप्त है। और फिर उसमें से अपन कुछ करने लगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन तो जीवन में आए बिना रहता नहीं है, पर फिर भी हमें हमेशा जो जो हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं उस ज्ञान में मुख्यतः यही है कि जितनी हमारी कषाय बंद हो जाए वही ज्ञान श्रेष्ठ है। ये हमने पिछले दिनों समझा, कर्म बंधन की प्रक्रिया सारी की सारी टिकी हुई है हमारे मन वचन काय की क्रिया और हमारी कषायों पर। जितनी जिसकी मन वचन काय की क्रिया सही होगी और जितनी जिसकी कषाय मंद होगी उसके कर्म का बंध उतना ही कम होगा, कर्मों की निर्जरा उतनी ही अधिक होगी। ये सीधा सीधा था सिद्धांत है, जिन्हें बंध न करने हुए ते कषाय न करें ऐसा लिखा हुआ है। जितना बन सके उतना कषाय से हम बचें। हम रोज इसलिए तो कर्म बांधते हैं क्योंकि हम रोज कषाय करते हैं, कोई ना कोई कषाय हमारे अंदर बनी रहती, क्रोध बना है, मान बना है, माया बनी हुई है या लोभ बना है, कोई ना कोई इन चार में से हमारे अंदर बना ही रहता है और इसलिए हमें निरंतर कर्म बनते रहते हैं और वे अपना फल देते हैं, तब हमारे लिए फिर हमारे परिणामों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। पर उस समय जबकि वे कर्म अपना फल दें, हमारे परिणाम हम संभाले रहें, ये हमारे कर्म सिद्धांत को समझने का मुख्य उद्देश्य है। हमने पिछले दिनों अलग अलग कैसे कैसे परिणामों से कौन से कर्म हमारे अंदर बंध जाते हैं इस पर बहुत सारी बातें समझी हैं। अपन समझ रहे थे विशेष रूप से नाम कर्म के बारे में, उसमें भी नाम कर्म में एक तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म है, वो तीर्थंकर पना कैसे प्राप्त होता है। तो सबसे पहले दृष्टि की निर्मलता, ये दर्शन विशुद्धि हमारे भीतर हो, तब जाकर के किसी केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में बैठ करके वैसी निर्मलता के साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जब करी जाती है तब जाकर के वो तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म बनता है। उसको बांधना आसान नहीं है, पर उसके लिए भावना तो भाई जा सकती है। तो अपन उन 16 कारण भावनाओं में से दर्शन विशुद्धि भावना कैसे हम भाएं। अपन सोचते हैं कि बार बार उसका चिंतन करना इतना ही पर्याप्त है, नहीं, हमारी दृष्टि भी निर्मल होते चली जानी चाहिए। अगर हम दर्शन विशुद्धि के बारे में समझ रहे हैं तो दर्शन विशुद्धि के साथ साथ हमारी दृष्टि कितनी निर्मल हुई है ये भी हमें देख लेना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है सबके भीतर मेरे ही समान आत्मा है ऐसा भाव धीरे धीरे आता जाए, सबके भीतर वैसे ही भगवान बनने की सामर्थ्य है जैसी कि मेरे भीतर है, सब आत्माओं के अंदर इस तरह अपने विशुद्ध स्वभाव को प्राप्त करने की क्षमता है, तब फिर किसी के प्रति मैं राग द्वेष का भाव क्यों करूं ऐसा हमारे मन में थोड़ी देर को आना चाहिए, ये कहलाएगी दृष्टि की निर्मलता। क्या ऐसा अपन अभ्यास नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। झट से हमारे मन का कोई व्यक्ति होता है तो उसके प्रति राग आ जाता, हमारे मन का नहीं होता तो उसके प्रति द्वेष आ जाता। दिन भर करते क्या है अपन, ये अपना ये पराया, ये अपना ये पराया। इसके अलावा और तीसरी कोई चीज होती है क्या, बताइए आप? उन दोनों चीजों से अपने पराये से थोड़ी देर को शांत हो जाना, जितनी देर हो सको, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड सही, अपने पराये का कोई भाव नहीं था, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना थी, तब जाकर के दृष्टि निर्मल होगी, दर्शन विशुद्धि सम्यक दर्शन के साथ जब हमारे परिणाम निर्दोष होते हैं तब दर्शन विशुद्धि भावना होती। दूसरी भावना है विनय संपन्नता, हमारे भीतर विनय का भाव होना चाहिए। विनय तो सभी लोग जानते हैं, पूज्य पुरुषों का आदर करना, सम्मान करना, उनका गुणगान करना, इसका नाम विनय है। विनय संसार की अलग है, मोक्ष मार्ग में बिल्कुल अलग है, पर संसार में भी विनय का बड़ा महत्व है। क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति, मानी व्यक्ति, अगर उसको जीतना चाहो तो विनय से जीत सकते हैं, सबको जीता जा सकता विनय के द्वारा, और सबसे बिगाड़ा जा सकता है अविनय और अनादर के द्वारा। हाँ, कोई व्यक्ति अपना बिगाड़ करना चाहे तो बिगाड़ भी कर सकता अविनय करके, और अगर अपना और सबका सुधार करना चाहे तो विनय के द्वारा सुधार भी किया जा सकता है। एक बार एक बड़ का पेड़ और बैंत दोनों पास पास में उगे थे, दोनों के बीच में बातचीत हो गई कि तुम किस काम के, तुम में जो फूल लगते हैं वो भी काम के नहीं, तुम्हारी छाया भी नहीं मिलती। बड़ के पेड़ ने बहुत सारी बातें बैंत के पेड़ को कहा, बांस का पेड़ तो बांस का पेड़ सुनता रहा चुपचाप, अब कि क्या करें, जो कुछ कहा जा रहा है वो ठीक तो है। देखो दूसरे के बारे में जो बातें हैं वे अगर खोटे मन से कही जाएं तो वे सब खोटी हो जाती हैं। वास्तविकता को भी अगर खोटे मन से कहो, ठीक है भाई छाया नहीं होती, वो कहां कह रहा है कि होती है, लेकिन आप उसी चीज को छाया नहीं है इस चुप को कमेंट की तरह कह रहे हैं उसको। तो बैत का पेड़ चुपचाप सुनता रहा कि ये बड़ का पेड़ मेरे ऊपर इस तरह से मेरी अपनी मजबूरी को मेरे दोष कह करके बता रहा है। कोई बात नहीं, एक दिन बड़ी आंधी आई, तूफान आया, तो फिर क्या हुआ, क्या संभवता हो सकता था, यही हुआ कि बड़ का पेड़ उस आंधी में अकड़ा खड़ा रहा तो उखड़ करके जड़ से नीचे गिर गया। और बांस का पेड़ तो आंधी में ऐसे लेट गया जमीन में, ऐसा लगा जैसे ये भी चला गया, नहीं, जैसे आंधी शांत हुई फिर ज्यों का त्यों वो खड़ा हो गया। अकड़ तो हमेशा तोड़ने का काम ही करती है, जोड़ने का काम तो झुकने से ही होता है, विनय से ही होता है। अगर हम अपने जीवन को भी अपने ही आत्मा से जोड़ना चाहें तब भी हमें विनय ही करना पड़ेगी। एक चीन में दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस, बड़े भारी दार्शनिक माने गए वो, तो वो बड़े मजे मजे की बातों में दर्शन समझाते थे। रास्ते से चले जा रहे थे, एक ने उनसे पूछा कि क्या महत्व है विनय का, तो हंसने लगे और कहने लगे मेरे मुंह में झांक के देखो। अरे विनय का महत्व पूछ रहे हो, कह रहे मेरे मुंह में, उनके मुंह में क्या था कि बूढ़े हो गए थे तो दांत वांत सब गायब हो गए, तो उन्होंने मुंह खोल दिया, झांको उसमें। उसने क्या मजा करते हो रस्ते में, तो उन्होंने कहा नहीं झांक के देखो कौन कौन है भीतर। तो उसने कहा कौन है, जीभ है और दांत, कहते दांत तो एक भी नहीं दिख रहा है। तो अच्छा, लेकिन वे आए तो बाद में थे और चले पहले गए, और ये जीभ पहले से आई है और अभी तक है, जानते हो किस वजह से, दांत अपने कड़ेपन की वजह से टूट गए और जीभ अपने लचीलेपन की वजह से अभी भी बची हुई है। दांतों ने एक बार अकड़ दिखाई थी जीभ को, तो जीभ ने कहा ठीक है तुम्हारी अकड़ ठीक कर देते हैं। जीभ ने ऐसी बात बोल दी कि एक ही मुक्के में सब टूट गए, सामने वाले से बोल दी ऐसी बात, कड़ी बात बोल दी जीव ने, तो सब साफ हो गया। इतने आसानी से समझा दिया कि विनय किसे कहते हैं, सर्वाइव करती है, विनय सर्वाइव करती है, हमेशा वो जीवित बनी रहती है। ये सामान्य विनय की बात है, अपन मोक्ष मार्ग की विनय संपन्नता की चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, सामान्य रूप से विनय। वर्णाश्रय चले जाते थे रास्ते से और कोई सामान्य आदमी उनको प्रणाम करता था तो हैट नीचा करके प्रणाम करते थे, तो लोग कहते थे कि अरे आप इतने बड़े होकर के और उनको ऐसे हैट उतार करके प्रणाम कर रहे हैं, तो बोलते थे कि अच्छा ये बताओ विनय करना अच्छी बात है कि नहीं। बोले अच्छी बात है, तो फिर मुझे क्यों मना कर रहे हो विनय करने से जब अच्छी बात है। क्या विनय करने से, किसी छोटे व्यक्ति की विनय कर लेने से मैं छोटा हो जाऊंगा, नहीं, जो आपसे झुककर मिला होगा मानिए वो आपसे बड़ा रहा होगा, जो जितना बड़ा होगा वो उतने ही झुक के मिलेगा, वो उतने ही विनयवान होगा, ये उसके बड़े होने की। अभी कल ही मैं एक उसमें नवनीत में पढ़ रहा था कि ऐसे सामान्य सी कहानी है उसमें कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों जन जो है में से कौन भगवान सबसे बड़े हैं, तो भृगु जो है, नहीं आती एक ठो उसमें कि कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात, ऐसा आता है उसमें, विष्णु का क्या घट गया जो भृगु ने उनको लात मार दी, तो उस पे से कहानी लिखी थी, बच्चों के लिए कहानी थी वो, तो भृगु गए ब्रह्मा जी के पास, ऐसे ही चले गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कितना आकड़ वाला हो गया ये भृगु, ऋषि होकर के भी गुस्सा आ गई उनको, भगा उसको यहां से, भगा दिया, हो गई ब्रह्मा जी की परीक्षा। महेश के पास पहुंचे शंकर के पास में, तो उनको भी गुस्सा आ गई। जब विष्णु के पास पहुंचे तो सीधी जाके, और वो लेटे हुए थे तो ये ऋषि तो थे, इन्होंने कहा कि होंगे आप भगवान भगवान, लेकिन ऋषि के आने से उठ के खड़े नहीं हुए और एक लात मार दी उनके, तब भी जो है उस पैर को पकड़ करके विष्णु सहलाने लगे कि भगवान, ऋषि भगवान, आपके पैर में चोट तो नहीं आ गई? मेरे वज्र जैसी छाती की वजह से आपको चोट लग गई हो तो क्षमा करना। तो वापस लौट करके सारी सभा में मुनियों की, और प्रभु ने कहा कि अगर भगवान है तो विष्णु है, प्रतीक है ये, भगवान वो है जो जितना विनयवान। कहने का आशय वहां ये था, ना कोई वहां ब्रह्मा है, ना कोई विष्णु है, ना कोई महेश, हमारे भीतर सब कुछ बैठा हुआ है, ब्रह्मा भी हमारे भीतर है। जब हम अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब हम अपने को संभालते हैं, जब हम अपने को मिटा देते हैं, यही तो तीन शक्तियां हमारे भीतर हैं। हमारे लिए बचाने वाली शक्ति अगर कोई है, हमारी रक्षा करने वाली, तो वो हमारी विनय की शक्ति है, वो ही हमें बचाए रखती है। कहने का आशय वहां पर ये है। विनय भी लोक में पांच प्रकार की विनय होती, मोक्ष मार्ग की विनय भी पांच प्रकार की है, लेकिन लोक में विनय लोकानुवृत्ति, विषय निमित्तक विनय, अर्थ निमित्तक विनय, भय निमित्तक विनय और मोक्ष निमित्तक विनय, ये पांच प्रकार की विनय है। उसमें से लोकानुवृत्ति, देश काल की स्थिति जान करके और दूसरे के अनुकूल वचन बोलना, हाथ इत्यादि जोड़ना, ये लोकानुवृत्ति कहलाती, ये सब लोग करते हैं। और अर्थ निमित्तक, अपना जिससे प्रयोजन सधरा हो, अपना जिससे स्वार्थ सधरा हो, उसके हाथ जोड़ना, उससे प्रेम से बात करना, ये सब अर्थ विषयक विनय कहलाती, ये भी जरूरी है, उसके बिना काम कैसे चलेगा। और आपके विषय निमित्तक, अपने इंद्रिय विषयों के पोषण के लिए, जैसे अपन ग्राहक कि उठक बैठक लगा देती कि नहीं लगा देती, इतने बड़े मालिक होके, इतने बड़े दुकानदार होके, जैसा ग्राहक कहता वैसा सामान दिखा देते उसके सामने, अपनी कोई इंसल्ट फील नहीं करते उस समय? करती हैं क्या? क्यों नहीं करते? क्योंकि यही विनय है, मुझे अपना अर्थ कमाना है, मुझे अपने इंद्रिय विषयों की पूर्ति करनी है, तो दूसरा जैसा कहेगा उसके अनुकूल प्रवृत्ति तो करना पड़ेगी। सैकड़ों सामान देखेगा और कहेगा अब नहीं खरीदना, उतर जाएगा, तब भी आप कुछ नहीं कह सकते, उस पर गुस्सा नहीं कर सकते। यही विनय है, दुकानदार की विनय है ये लोका। हाँ, लोक में ऐसा करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। और भय विषयक, कई बार भयभीत होकर के भी किसी को हाथ जोड़ना पड़ते हैं, दबाव में भी हाथ जोड़ना पड़ते हैं, इस तरह से कि भैया बात ने बिगड़ जाए, खल को प्रणाम करके काम शुरू करो, नीति में लिखा हुआ है, जो उपद्रव कर सकता हो कि पहले आरती उतार लो, कि तुम ठंडे रहो, हमें माला काम करन दू जी, मैं सार है। हाँ, तुम्हारी इतने में तुम माना तो खुशी हो, तुम कर ले बिना तुम्हारी। तो ऐसे खल आदमी की भी विनय की जाती, वो सब भय निमित्तक विनय। लेकिन इन चार प्रकार की विनय से तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती, न लोकानुवृत्ति से, न अर्थ निमित्तक, न कि विषय निमित्तक, न भय निमित्तक, मोक्ष निमित्तक जो विनय है, ये सब तो आज की भाषा में बटरिंग कहलाती है ना। इस तरह की विनय को अपन बटरिंग को अच्छी नहीं मानी जाती लोक में विनय, लेकिन जो मोक्ष मार्ग में विनय है वो भी पांच प्रकार की विनय, उसे हमें समझ लेना चाहिए। ज्ञान की विनय, ज्ञानवान की विनय, दर्शन की विनय, दर्शनवान या कि श्रद्धालु जनों की विनय, चारित्र की विनय और चारित्रवान की विनय, तपस्या की विनय और तपस्वी जनों की विनय, और उपचार विनय। फॉर्मल नहीं, उपचार के मायने यहां पर औपचारिक या फॉर्मल नहीं लेना, उपचार विनय कपन समझेंगे कि किस तरह से होती है। ज्ञान की विनय क्या है? ज्ञान की आराधना करने में आलस नहीं करना, ये ज्ञान की विनय। जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही उसका अर्थ निकालना, ये ज्ञान की विनय। अपने मनमानी अर्थ नहीं निकालना, नहीं यही अर्थ है, ऐसे कैसे? जैसे कि पर्वत और नारद ने अपने एक ही गुरु से पढ़ा था, लेकिन क्या अर्थ निकाल लिया था? आज के मायने तीन साल पुराने चावल होता था आज का अर्थ, लेकिन बकरा अर्थ निकाल करके और उसका गलत प्रचार कर दिया था, ये ज्ञान की विनय नहीं कहलाएगी। जैसा अर्थ कहा है गुरु ने, जैसा आचारी भगवंतों ने या कि भगवान ने जो कहा है वैसा ही अर्थ निकालना आज जो है मनमानी व्याख्या कर रहे हैं लोग, तो क्या वो ज्ञान की विनय कहलाएगी? नहीं कहलाएगी भैया। जैसी लिखी हुई है वैसी व्याख्या करना, अपने मन की व्याख्या नहीं करना, सूत्र में जो आगम में लिखा हुआ है और उसकी आराधना करने में आलस नहीं करना, कौन पढ़े हमारे तो बहुत कठिन लगता है, ऐसा नहीं कहना। कठिन क्यों लगता है? आप अभ्यास करो तो कैसे नहीं आएगा? विनय पूर्वक स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करते समय विनय रखना, जो स्वाध्याय कराया जा रहा है उसके समय भी विनय रखना, कंसंट्रेशन रखना, एकाग्रता रखना भी ज्ञान की विनय है। जब अपन स्वाध्याय कर रहे हैं या कोई वचन का हो रही धर्मोपदेश हो रहा है तब जो है, और अपन यहां वहां ध्यान देते हैं दूसरी चीजों पर, वो उस ज्ञान की अविनय है। पूरे एकाग्रता से उसे सुनना ये भी ज्ञान की विनय है। आठ प्रकार से विनय की जाती ज्ञान की और ज्ञानवान की। उसमें लिखा है प्रवचन सारजी में कुंद कुंद स्वामी ने कि जो विशेष चारित्रवान है वह भी अपने से चारित्र में कम लेकिन ज्ञान में अधिक की पहले विनय कर। आचार्य धर्म सागर जी और आचार्य शुद्ध सागर जी एक ही मंच पर बैठने के लिए तत्पर जब हुए, और आचार्य ज्ञान सागर जी भी वहीं थे जो कि आचार्य महाराज के गुरु हैं, आचार्य अपने आचार्य श्री के गुरु ज्ञान सागर जी महाराज वो भी वहीं थे। उन्होंने आचार्य धर्म सागर जी को पढ़ाया, उन्होंने शुद्ध सागर जी आचार्य को पढ़ाया, सभी आचार्यों को उन्होंने ही पढ़ाया। जब भी एक ही मंच पर बैठने लगे तो धर्म सागर जी महाराज चारित्र में बहुत श्रेष्ठ आचार्य, लेकिन ज्ञान में श्रेष्ठ तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। कौन पहले बैठे आसन पर? दोनों जन खड़े हैं, वो कह रहे हैं आप पहले बैठिएगा, आप ज्ञान में बड़े हैं, और ज्ञान सागर जी कह रहे हैं अरे नहीं, ज्ञान से क्या होता है, आप तपस्वी हैं, आप पहले बैठिए। और दोनों जन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ बैठ गए कि अरे कौन पहले कौन बाद में, चलो बैठते हैं। लेकिन वहां अपन को शिक्षा लेने की कौन सी बात है? शिक्षा लेने की बात यह है कि एक दूसरे के ज्ञान और आचरण की विनय कर रहे हैं, ये विनय संपन्नता है। और अपन अपने बारे में अपन को विचार कर लेना चाहिए कि करते हैं क्या विनय। अपन से थोड़ा भी कोई गुणों में ज्यादा है तो उसके प्रति अपने मन में विनय का भाव आता है, बल्कि ईर्ष्या का भाव और आने लगता। यही तो सीखना अपने को कि किसी को भी गुणवान अपन देखते हैं तो झट से ईर्ष्या कर लेते हैं, जबकि उसकी विनय करना चाहिए थी। कोई भी एक गुण किसी के अंदर है तो उसकी भी विनय करनी चाहिए, उसके प्रति भी विनय से पेश आना चाहिए। हमें सीखना चाहिए, जो उसमें लिखा है कि किसी से एक अक्षर का ज्ञान भी प्राप्त किया है तो उसकी विनय करना चाहिए, एक अक्षर का ज्ञान। ज्ञान की विनय सबसे श्रेष्ठ मानी गई। दर्शन की विनय करना मतलब स्वयं सच्चे देव गुरु शास्त्र वीतरागता के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखना, पूजा करना, देव दर्शन करना, ये सब जो है दर्शन की विनय है। आप क्या सोच रहे हैं देव दर्शन करने में हमने अपने सम्यक दर्शन की विनय करी है, भगवान की पूजा करी है तो हमने अपने ही सम्यक दर्शन की विनय करी है। चारित्र का पालन करना, व्रत नियमों का पालन करना, और कोई व्रत नियम ले तो प्रसन्नता व्यक्त करना। अपन करते हैं शाम को छोटा सा, कोई मायने नहीं रखता। बताइए एक तो छोटा सा नियम लिए, महीने भर को हमारा फलानी चीज का त्याग, लेकिन महीने भर को लिया है ठीक है, एक दिन को भी ले तब भी उसके व्रत और नियम। कभी भी किसी व्रत को छोटा नहीं मानना, व्रत और नियम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि सब भगवान के द्वारा कहे गए हैं इसलिए सब बड़े हैं। जितना भी त्याग है, चाहे वो एक पैसे का त्याग हो चाहे एक अरब रुपए का त्याग हो, त्याग तो त्याग ही है। जैसे एक पैसे की चोरी हो चाहे एक अरब रुपए की चोरी हो, बराबर चोरी है, इसी तरह त्याग भी बराबर की है, कोई छोटा बड़ा त्याग नहीं। इसलिए जहां भी कोई त्याग कर रहा हो उसकी प्रशंसा करना, उसकी विनय करना, उसका आदर करना, उन क्षणों में जबकि वो त्याग से भरा हुआ है। अपन को तो कोई अगर थोड़ा त्याग करे, इसलिए भी गड़बड़ हो जाती, जो जितना त्याग करे उसको तो उतना और विनयवान होना चाहिए कि आपने स्वीकार कर लिया, हाँ अब हम प्रयोग कर रहे हैं इस चीज का। अभी तो अपने यहां पर इस तरह का प्रयोग बहुत कम होता है, ऐसा बोलते हैं अपन, उसमें क्या झलकता है, अभिमान झलकता है बोली लगाते समय। लेकिन आगे आने वाला है 28 तारीख, जिस दिन हमारे पास अभी लोग निवेदन करने आ रहे हैं अलग अलग कि हमारी तरफ से भी कुछ मदद दिलवा दीजिएगा, विचार करेंगे, आपका पैसा रखे रहो अपने पास, देखेंगे विचार करेंगे। ऐसा नहीं कि आप आए कि हमारा इतना बच्चों को हमारी तरफ से इतना दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। हम डिसाइड करेंगे कि आपका लेने लायक है कि नहीं। अब आएगा सही आनंद कि हाँ देने वाला अब झुक रहा है। देने वाला कभी बड़ा नहीं होता, ध्यान रखना, लेने वाला बड़ा है। अगर लेने वाला इनकार कर दे तो धरा जाएगा वो, आप अपने का काम की तुम्हारे भी ठीक रहा है। हाँ अगर लेने वाला इनकार कर दे, अगर हम छोटे से बच्चे को जब हम पेंसिल देते और वो कहे कि नहीं चाहिए, कैसा लगता है उस समय कि कर लो अब क्या कर रहे हैं आप, दे लो देखें आपकी कितनी सामर्थ है, सब धरी रह जाती। ले लेता है वो मुनि, हमने आपको नहीं सुनाया था, आचार्य श्री से भी किसी ने कह दिया था जब कि नहीं महाराज, देने वाले का ही हाथ ऊंचा रहता है, लेने वाले का तो नीचा रहता। तो आचार्य श्री ने कहा कि ध्यान रखना, कांपता ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं कांपता, लेने वाले का नहीं कांप रहा मुनि महाराज का हाथ, देने वाले का कि क्या पता बंद न कर ले गए, न भरे रह जाओ तुम, चाहे पूरी हो चाहे हलवा हो कछु हो, बंद माने बंद। अब देव कैसे देते दान, तो देने वाला उसको ये सोचना चाहिए कि त्याग करने वाला बड़ा है, चारित्रवान बड़ा है। जो विषय भोग की सामग्री जितनी रख रहा है अपन उसको बड़ा मान लेते हैं कि इनके पास इतनी विषय भोग की सामग्री, इनके पास इतना धन पैसा है। नहीं, विषय भोग की सामग्री जिसके पास ज्यादा है वो बड़ा नहीं है, जिसने विषय भोग की सामग्री को छोड़ दिया वो बड़ा है। इसलिए चारित्रवान की विनय मन में आनी चाहिए। देखो ये चीजें अडॉप्टेड नहीं है, ये चीजें कहीं से गोद लिए के समान नहीं है, ये चीजें तो अपने अंदर से आने वाली चीजें हैं कि हमारे मन में खुद ही जो है, जहां कहीं हम गुण देखें वहां हमारे मन में विनय आने लगे। तो चारित्र की विनय, तपस्वी की विनय, कोई अगर थोड़ी भी तपस्या करे तो उसके प्रति मन में हर्ष का विचार आना। और एक चीज और है, अपनी तपस्या से दूसरे की तपस्या को नीचा नहीं करना, ये ध्यान रखना। अपने ज्ञान से दूसरे को अज्ञानी साबित करना नहीं, अपन में दो चारित्र ज्यादा है तो दूसरे को के चारित्र को कम नहीं मानना। अपन रोज मंदिर जा रहे हैं तो जो मंदिर नहीं जानता जाता उसको दीनहीन मत मानना, नहीं तो आपके मंदिर जाना व्यर्थ है, ये भी ध्यान रखना। विनय में शामिल है, नहीं जा रहे ठीक कोई बात नहीं, कोई चारित्र पालन नहीं कर रहा, लेकिन हम चारित्र, मैं चारित्रवान हूं ऐसा अहंकार नहीं कर लेना, नहीं तो वो चारित्र की विनय नहीं कहलाएगी। हाँ चारित्र और ज्ञान और दर्शन और तपस्या की विनय, ये सब अधिक होने पर भी विनम्र रहना, बहुत ज्ञान होने पर भी हाथ जोड़े रहना कि मेरे पास तो कुछ भी ज्ञान नहीं, अज्ञान अनंत है, ज्ञान तो इतना ही सा है। जब केवल ज्ञान होगा तब कहलाएंगे कि हाँ सचमुच ज्ञानी है, ये तो छह उपसम ज्ञान है, अबे सुबेरे याद है कौ संध्या को भूल जावे, ये को का अहंकार करना। इस तरह ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की विनय, और तपस्वी ज्ञानवान और श्रद्धालु और चारित्रवान की विनय, ये है विनय संपन्नता। और उपचार विनय क्या कहलाती, अपने से बड़े गुरुजनों के आने पर खड़े हो जाना, हाँ उनसे पीछे पीछे चलना और उनको नमस्कार इत्यादि करना, और सबसे बड़ी चीज सामने सामने तो सब कर ले, कहते पीठ पीछे भी मन वचन काय से उनके गुणगान करना, ये है उपचार विनय। फॉर्मल नहीं है ये, बहुत कठिन है। सामने सामने तो हाथ जोड़ लेते, लेकिन जैसे ही आगे निकले, हाँ ठीक है महाराज जी हैं, राग द्वेष बहुत है, पक्षपात बहुत है, सब देख लाओ, इतने दिन से देख रहे हैं हम तो, हमसे तो आज तक बात नहीं करी, और जने आउ थे हमसे, बड़े बड़े आदमों से बात कर रहे थे हम तो, हमें तो समय ही नहीं देख, जी नहीं कहलाएगी विनय। हाँ ध्यान रखना, ऐसे ऐसे खोटे विचार आ जाते मन में, सब धरा रह जाता हाथ अकेले। जो हम तो कई बार कहते हैं कि हाथ अकेले जोड़ लिए हैं, खुद नहीं जुड़ पाए, माथा तो झुका लिया पर खुद नहीं झुक पाए। बहुत कठिन है अकेले हाथ जोड़ना, विनय नहीं है। उसके साथ साथ मन भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। परोक्ष में भी हजार किलोमीटर गुरु बैठे हैं, लेकिन जब भी मन में विचार आएगा तो उनके प्रति विनय का ही विचार रहे। हजार किलोमीटर दूर कोई अगर उनके बारे में एक भी खोटी बात कहे तो ये कान उसको सुनने से इनकार कर देंगे, तब कहलाएगा विनयवान। अपने गुरुजनों की कोई निंदा करता हो तो वहां से हट जाना या उससे कह देना कि सावधान, अब कहा तो कहा, आगे कुछ मत कहना। मेरे कान अपने गुरुजनों के पूज्य पुरुषों के निंदा सुनने के लिए नहीं मिले, मैं हमेशा उनकी उनकी प्रशंसा ही सुनना पसंद करूंगा। है उनके अंदर लाख दोष, लेकिन आपसे सुनना पसंद नहीं करूंगा। हाँ, ये चीज, ये उपचार विनय कहलाती है। हजार किलोमीटर दूर रह करके भी उनकी आज्ञा के अनुसार ही चलना, एक कदम भी बिना आज्ञा के नहीं रखना, ये उपचार विनय है। ये पांचों प्रकार की विनय मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। इसी के द्वारा उसमें लिखा है कि जो शिष्य अपने गुरु की विनय नहीं करता, वो तो समझ लो ऊसर भूमि में बीज बोना है, उसकी सारी तपस्या निष्फल है। ऐसा लिखा, जो शिष्य अपने आज्ञा के बिना तपस्या भी कर ले तो उसकी सारी तपस्या कैसी व्यर्थ है, जैसे कि ऊसर भूमि में बीज बोया है व्यर्थ हो जाता, ऐसे व्यर्थ। पूज्य पुरुषों के प्रति हमारे मन में विनय का भाव सदा बना रहना चाहिए। हमने तो आचार्य श्री की विनय भी देखी है, इतने बड़े आचार्य होकर के मुझे याद है, हम लोग जब 1991 में सतना का चतुर्मास करके लौटे, हमारे साथ और भी 6 महाराज जी थे, समता सागर जी, प्रमाण सागर जी और एलक जी वगैरह थे, हम लोग 6 लोग थे चतुर्मास करके लौटे 1991 में। तब मरिया जी में आचार्य श्री से मिलना हुआ, हम लोग 6 किलोमीटर बरगी की तरफ उनको लेने गए, फिर 6 वापिस आए, और पहले भी आधार ताल से चल करके 15 किलोमीटर आए थे, उस दिन 30 किलोमीटर चले सुबह से लेकर के शाम तक। और आचार्य श्री को बाद में जब मिले उनसे, और रास्ते में चले आ रहे थे, एक बाजू हम हैं, समता सागर जी चले जा रहे हैं रास्ते से, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ हुआ, आपकी कृपा से बहुत अच्छा चतुर्मास हुआ, ऐसे कहते जा रहे थे। तो थोड़ी देर में आचार्य श्री क्या बोलते हैं, हाथ पकड़ करके, अरे हमारा इसमें क्या है, आचार्य ज्ञान सागर जी की हम पर कृपा थी, उसकी वजह से ये सब हुआ। और आचार्य ज्ञान सागर जी से जब मैं कहता था कि आपकी कृपा, तो वो कहते थे, अरे ये तो और पुराने आचार्य, ये तो भगवान महावीर स्वामी की परंपरा चली आ रही है, उसी के अनुसार हम कर रहे हैं, हमारा इसमें क्या है। ये कहलाएगी विनय। जब कोई हमारे प्रति विनय व्यक्त करे तो हम अपने गुरुजनों के प्रति, आप हमारे लिए अर्घ चढ़ाते हैं, हमने कभी नहीं माना कि आप हमारे लिए अर्घ चढ़ाते हैं, हमने हमेशा यही सोचा कि हमने तो आचार्य श्री को अर्घ चढ़ाया। आप भले ही हमारे सामने अर्घ चढ़ाते हैं, हमें नहीं रुचता, हम सही बताएं तो अपने लिए अर्घ चढ़वाना, अकेले एक जगह चढ़वा लेते हम तो, वो भी चूंकि लिखा है आगम में कि उस अर्घ चढ़ाए बिना आहार नहीं लेना, इसलिए बाकी समय पे हम जानते हैं जब जब अर्घ चढ़ाया जाता तो हम तो वहीं भेज देते कि हमारे बस को नहीं है जो झेल वो, हाँ वहीं वहीं गुरु जी के लिए है ये अर्घ, हमारे लिए अर्घ नहीं है। हमेशा जो है अपने गुरुजनों, क्योंकि हमारी उनके बिना एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वे अगर हमारे ऊपर कृपा करके हमें ये नहीं देते तो क्या आज हम आपके बीच होते, क्या कहीं किसी कुर्सी पे और फाइलें देख रहे होते और क्या करते ज्यादा से ज्यादा, बताइए आप, नहीं इससे ज्यादा और क्या होता। तो ये बहुत बड़ी उनके प्रति हमारे मन में अपने गुरुजनों के प्रति उपचार विनय कहलाएगी। एक घटना आती है, आचार्य श्री से किसी ने ऐसे ही कह दिया कि महाराज साधु लोगों में जरा भी विनय नहीं रहती, कैसे हम लोग उनको इतना प्रणाम इत्यादि करते हैं, अरे शिष्टाचार वश उनको भी तो कुछ कहना चाहिए, जब श्रावक उनको विनय करें हाथ जोड़ें। और दूसरी बात महाराज, जब आपके पास आते हैं तो आप बैठ भी तक की नहीं पूछा, जाता नहीं कहते कि आओ बैठो, इतनी विनय तो आनी चाहिए, ऐसा आचार्य श्री से ये होने की जो भी चीजें मैंने सुनाई मैं आपसे कहूं पूरे 16 दिन तक, अगर 16 दिन चला नहीं, वैसे दो दो आज तो टाइम हो गया, मैं सोच रहा था कि दो दो भावना एक दिन में कर लेंगे नहीं तो बहुत लंबा होएगा, पर आज एक ही हो पाएगी, विनय संपन्नता। ये सब आचार्य श्री का ही कहा हुआ, आचार्य श्री ने 16 कारण भावनाओं पर जो सन 75 में प्रवचन दिए थे भैया, वो हैं, उन्हीं को उन्होंने जितनी बार हम लोगों को बताया वो ही समय आपको आपको बता दे रहे हैं। तो उन्हीं का आचार्य श्री के जीवन का संस्मरण है, वो आचार्य श्री ने हम लोगों को सुनाया था कि एक बार एक व्यक्ति आके कहने लगे कि महाराज साधु लोग तो बिल्कुल शिष्टाचार नहीं करते, विनय नहीं करते, कोई उनको प्रणाम करता है तो बिल्कुल प्रणाम नहीं करते, वो न आने जाने की पूछते न बैठने की पूछते। तब आचार्य श्री ने क्या जवाब दिया था कि वे भी शिष्टाचार का पालन करते हैं। कैसे करते हैं? देखो भैया, अगर हमारी जमीन हो, हमारी जगह हो, तो हम कहें कि आओ बैठो, अब हमारी तो जगह है ही नहीं, हम कैसे कहें कि आओ बैठो, दूसरे ने तो हमें रुक भी जगह दी और हम ही कहने लगे कि आओ बैठो, है? तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि बैठना पूछें। और जब कोई साधु को प्रणाम करता है तो वे शिष्टाचार वश क्या कहते हैं, आगम की कितनी आज्ञा है कि जब कोई शावक उन्हें प्रणाम करे साधु को तो चेहरे पर प्रसाद, चेहरे पर प्रसन्नता और हाथ से अभय की मुद्रा और मन में कल्याणमस्तु, कल्याण हो। यही विनय है, यही शिष्टाचार है। साधु भी शावक की विनय कर रहा है, कैसे? आपके प्रणाम को स्वीकार कर लिया और आपने तो सिर्फ हाथ जोड़े, हमने तो मन में आपके कल्याण की भावना, भाई हाथ से अभय, निश्चिंत रहो, मेरी तरफ से आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, डोंट वरी, जरा भी हमारी तरफ से आपको कभी भी स्वप्न में भी आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा हमारे जीवन से। और चेहरे पर प्रसाद, प्रसाद मतलब मुख की प्रसन्नता, यही विनय है। इस तरह आचार्य श्री ने और उनको संतुष्ट किया, सब परस्पर एक दूसरे के प्रति और विनय का भाव अगर व्यक्त करें तो कितना आह्लाद होता है। एक छोटे से बच्चे के प्रति भी अगर आप उसके मुस्कुरा के बात कर दीजिएगा, उस बच्चे को मुख पर प्रसन्नता हो, फिर देखिए कैसा गदगद हो जाता है मन। और अगर कोई ऐसे ही गुस्से में देख ले वे तो कैसा हो जाता मन। इतना सा ही तो फर्क है, चेहरे पर प्रसन्नता ही विनय है, बताइए। और अंतरंग में दूसरे के कल्याण की भावना भाना, ये विनय है। मेरे जीवन से किसी को कष्ट ना पहुंचे ऐसी भावना रखना, ये विनय है, ये बहुत बड़ी विनय है। मोक्ष मार्ग में ऐसे विनय संपन्नता से ही प्राणी मात्र का कल्याण हो, इस विनय संपन्नता में ये भाव छिपा हुआ है, सबके कल्याण का भाव छिपा है। इसलिए विनय संपन्नता भी तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म के बांधने में निमित्त बनती है। अपन सबके जीवन में सब प्रकार से ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप और उपचार विनय आवे। मोक्ष मार्ग में जो विनय जरूरी है वो विनय हमारे सबके जीवन में आए, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतार
रस पान किया करते सुख दुख दानों की घड़ियों में बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां सम की अविनश्वर मणिया हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो अपर भास वेखो बानु शिव कानी है बताए वे को जीवों के जताए वे को काबू न सताए वे को भव्य और आनी है वाणी के जानते सूझे लोका लोक सुवाही मस्तक नमो सदा देत हो दो दिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरो शरण आ गए सो पावे सुख चैन जिन ग्रहे मुनि राज
महाराज के पवन श्री चरणों में प्राप्त है हर हर।